Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say,
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ قرب مصطفیٰ کا باعث درود پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامنے اس وقت سورہ نور ہے اور سورہ نور میں 18 آیات ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جو واقعہ عفق ہے، آپ پر جو بہتان لگایا گیا، اس پر جو قرآن کریم کی 18 آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی اور اس پوری گفتگو کو بہتان کہہ کر ختم کر دیا گیا، عفق بہتان کہہ کر ختم کر دیا گیا۔ منافقین کی یہ بڑی چال تھی اور ایک وقت گزرا، کافی پریشان کن وقت تھا وہ جو گزرا، بڑی مطلب کہ پوری جیسے کہتے ہیں نا شد و مت کے ساتھ انہوں نے وہ مومنٹ چلائی تھی منافقین نے۔ خیر آخر کار اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیاتیں نازل فرمائیں اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ یہ بہتان لائے ہیں اور پھر آپ کے فضائل۔ پھر اس ضمن میں جو قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ کو جب پڑھتے ہیں نا، جو اس پورے مضمون کو جو میں آج آپ کے ساتھ لایا ہوں، میں چند چند جگہوں سے کچھ سوسائٹی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو نارملی میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ پاک خیر فرمائے کہ اس میں تہمت کی جو بہتان لگایا گیا اس کے تعلق سے آیت نمبر جو 18 آتی ہے کہ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں جو میں تفسیر صلاۃ الجنان کو جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر مفتی صاحب نے بہتان تراشی کا مضمون لیا ہے۔ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو، اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ہر ایک پر یہ بڑا بہتان بڑی گرا گزرتی ہے کہ کیا ہی نہیں ہے، یہ کیسے بول دیا یار، کیا ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں میرے ساتھ، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور اگلا بات کر گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے، حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ اتنی سخت اس کے اندر سزا ہے، किसी के बारे में बात करना, ये तो बोलते बोल दिया हमने, जबान चला दी, मगर कयामत के दिन ये शख्स क्या जवाब देगा, इस पर गौर करे, दोबारा समझ ले बोहतान और गीबत के फर्क को। किसी शख्स में अगर बुराई है और आप उसके पीठ पीछे बयान करते हैं तो इसको गीबत लेंगे ना, बुराई है। जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसमें वो बात है तभी तो गीबत है, अगर बात ना होती तो बोहतान होता। तो गीबत जब की जाती है, जबकि वो गीबत है तो उसमें सच तो मिलता है ना, लेकिन बोहतान वो है जिसमें सच नहीं, इसमें झूठ है, अगले में ये बुराई है ही नहीं, इसने ऐसा किया ही नहीं है, और उसको बयान कर देना कि इसने ऐसा किया है। हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी बात जिक्र की जो उसमें नहीं, ताकि इसके जरिए उसको ऐब जदा करे, तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम में कैद करेगा, यहां तक कि वो उसके बारे में अपनी कही हुई बात साबित करे। इससे मुराद यह है कि तवील अरसे तक वो अजाब में मुबतला रहेगा। कितनी सख्त, यानी आप इसके आगे जो वजाहत है, लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि बोहतान तराशी से बचे, और जिसने किसी पर बोहतान लगाया इसे तौबा करना और माफी मांगना जरूरी है, बल्कि जिनके सामने बोहतान बांधा इनके पास जाकर यह कहना जरूरी है, मैंने झूठ कहा था जो फना पर मैंने बोहतान बांधा था। अब तो बात ही मसला ही कोई नहीं है ना, अरे इतना ये प्रॉब्लम है, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि कोई किसी के बारे में बात करते में आसरा करता ही कोई नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ना करे आपके पास कोई शख्स आकर कोई बात करता है, अरे भाई मैं जानता ना उसने ऐसा किया है, अरे वो ऐसा है, आप क्या करेंगे? हम एक प्रैक्टिकल चीज पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि अल्लाह पाक हमें भी बचाए और देखे मुसलमानों को बचाए। आपने क्या करना है, मैं अब ये बता रहा हूं। एक तो हमें बोहतान तो नहीं लगाना ना, पता ही कोई नहीं है किसी के बारे में, मोबाइल पे पता चला, सोशल मीडिया के जरिए पता चला, व्हाट्सएप के जरिए पता चला, फेसबुक के जरिए पता चला, अखबार के जरिए पता चला, उधर टीवी के जरिए पता चला। क्या ये सारे जराए ऐसे हैं कि जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर लोगे? नहीं, ये सारे जराए ऐसे नहीं है जिस पर मुकम्मल तौर पर बंदा आंख बंद करके यकीन कर लेगा, नहीं हो सकता ना। अब आपके पास जरिया कौन सा है? मुझे ना व्हाट्सएप के जरिए पता चला, ना मुझे वीडियो के जरिए पता चला, ना मुझे टेस्ट के जरिए पता चला, ना मुझे फेसबुक के जरिए पता चला, ना मुझे यूट्यूब के जरिए पता चला, ना मुझे टीवी के जरिए पता चला, मेरे पास ये कोई जरिया नहीं है। अब भाई कैसे पता चला? मुझे खुद उस आदमी ने आकर बताया है। अच्छा चलो भाई, नहीं लाया आदमी ने आकर खुद बताया है, आपने मान लिया, क्या करता भाई? अब क्या करते आप? उसको कहते कि अगर तुम बात जो कह रहे हो सच है तो गवाह लाओ, शरी गवाह लाओ, शरी सबूत लाओ। मैं कैसे, बात समझ रहे हैं ना, मैं कैसे किसी मुसलमान के ऊपर कही गई बात का मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई गवाह, कोई शरी सबूत कुछ है आपके पास? आप यकीन माने तकरीबन केस खलास, उसके बाद एक ही होगा मैंने सुना है। अच्छा आप कहेगा मेरे पास सबूत है। अब दो रास्ते है, मेरे से वास्ता ही कोई नहीं है सबूत, मैं क्यों किसी मुसलमान के ऐबों में पढूं भाई? मेरा रब करवाता है वला तजस्सु, और ऐब ना ढूंढो, मैं क्यों ऐब ढूंढू? मुझे क्यों किसी मुसलमान के बारे में आप बेका रहे हो, जबकि वहां बेकाना कोई शरण दुरुस्त भी नहीं है, कोई शरण मसलियत नहीं है, कोई शरी हाजत नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जैसे फाजिर को मशहूर करोगे लोग उसे कब पहचानेंगे, इसकी शराब पढ़ के फिर बंदा बात करे इसकी भी कोई सूरत है या नहीं है। ये सारी बातें मैं बयान कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके अंदर में और 10 सवाल पैदा होंगे कि भाई ये भी तो है, ये भी तो। मैं सारे सवालात के जवाबात, सारे तो नहीं कह सकते, कई सवालात के जवाबात देता हुआ मैं गुजर रहा हूं इस बयान करने हुए कि भाई मतलब मुझे वास्ता ही नहीं है। अच्छा वास्ता है, वास्ता है तो भाई वो जो शरी सबूत मेरे पास सबूत है वो कह रहा है, कहा है लाओ। और आप किसी मुफ्ती इस्लाम से पूछ लें कि शरई सबूत कहते किसको है, शरई गवाह कहते किसको है, कोई कह देगा ये शरई सबूत है, क्या वाकई इस्लाम उसे शरई सबूत मानता है, क्या वाकई इस्लाम उसे शरई गवाह मानता है, क्या वाकई इस्लाम उसे शरई दलील मानता है। बात कोई आम नहीं है, बात एक मुसलमान की इज्जत की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान की मुसलमान पर हराम है उसकी जान, उसका माल, उसकी इज्जत। और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है, मुझे पता है कि मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका फरमाते हैं तो खलास। आप अगर किसी मुसलमान के बारे में कोई बात करते हैं शरई सबूत लाइए, शरई गवाह लाइए, और अगर कहीं स्पेस है तो उसको समझाइए कि क्या तुझ पर वाजिब है किसी मुसलमान के बारे में इस तरह की बातें करना और इस तरह की टो में जाना कि हमने तो ये हदीस सुनी है जो मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह तुम जानते हो कि नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए, तो कहां करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, क्या इसकी तुमने कभी फलसफा पढ़ा है, कभी इसकी लॉजिक पढ़ी है, कभी ये सुना है, ये इस्लाम और दीन और शरीयत की हिकमत की ये बातें कहीं पढ़ी सुनी है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों जो मैं बयान कर रहा हूं ना इस वक्त, अगर थोड़ी संजीदगी के साथ गौर करें हमारी जबानें बंद हो जाएंगी, बैठ कर कोई बात ही नहीं होगी। गीबत करनी नहीं है, बोतान लगाना नहीं है, क्या गीबत करनी नहीं है, बोतान लगाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, ऐप खोलना नहीं है। अब चार आदमी बैठ के एक दूसरे का मुंह देखेंगे तो भाई कुछ तो बोलो, क्या बोलू, कुछ तो बोलो, क्या बोलू भाई, तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं है बस अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें, अब अच्छी अच्छी बातें कहां से करें यार, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, भरा है, कुछ खाली करना है। अब मैं सही बता रहा हूं, अगर ये हमारा ब्रेक लग गया ना, फुल ब्रेक स्टॉप, फुल स्टॉप, कोई नहीं, कुछ नहीं सुनना भाई, कुछ नहीं बोलना, पहले तो यह साबित करो कि तुम पर लाजिम है कि तुम किसी मुसलमान के बारे में ये बात करते हो, फिर शरई गवाह पेश करो। ये तोहमत और बोतान वाला मामला ऐसे निकल जाएगा, बता रहा हूं मैं, गीबत ये मतलब बंदा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आसान थोड़ी है। अम्मी जान हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो आयतें नाजिल हुई है, इसमें सोसाइटी को ऐसा पाक किया जा रहा है, आइंदा मतलब के आदमी को हिदायत हो जाएगा करना क्या है, और ऐसी ऐसी वईदें हैं, ऐसा ऐसा डराया गया है। खास मौके की आयतों को फिर मुफस्सिर फरमाते हैं कि इसे आम तौर पर मुसलमान इस पर गौर करे, इससे पहले बदगुमानी, इन आयत से पहले बदगुमानी से मना किया। तो यहां तक फरमाया क्यों ना हुआ, जब तुमने सुना था तो कह देते कि ये खुला बोतान है। तो अगर ये सारा आप मेरे जो कह रहा हूं, अगर आप सुने थोड़ा सा गौर करें, ठंडे दिल से सोचे, आ यार घर में भी कोई ऐसी बात होती है, क्या सबूत, शरी गवाह, मैंने ऐसा किया है, मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैंने ऐसा किया है, केस खत्म, 15-15 लोग आए हैं, 15-15 20-20 लोग जमा होकर आए हैं, मैंने कहा शरी सबूत, शरी गवाह नहीं सुना है, टायर से हवा निकल के कुछ नहीं था, क्या था, कुछ नहीं है यार, बुक्स भरा हुआ है, कीना भरा हुआ है, बंदा अच्छा ही नहीं लगता, कोई कहीं से लाकर इसकी बस मतलब के इसको बदनाम करना है। अरे बदनाम करने वाले को खुदा का खौफ कर, तो तू कयामत के दिन तुझे तेरे रब ने खड़ा कर दिया कि जो तू कहता था उसको साबित कर, दुनिया को छोड़ तो अपने रब के आगे कैसे साबित करेगा, सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है, जबान को बंद करो। और जब तक शरीयत वाजिब ना कर दे किसी के बारे में किसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, और अगर ये कर दिए और बहुतान लगा दिया है, सुन रहे हैं ना, कर दिया बहुतान लगा दिया, तो अब तौबा भी करनी है, उससे माफी भी मांगनी है, और जिन जिनको बताया उनको यह कहना है कि मैंने झूठ बोला था। आओ ना, जब किसी को बदनाम करना था तो बड़े खुलकर बातें कर रहे थे, और आज जब अपना इकरार करना है जुर्म, वो तो मुजरिम नहीं था, लेकिन आप तो मुजरिम बन गए ना, उसको मुजरिम बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी, आज अपने उस जुर्म से निकलने के लिए, उसे सुथरा करने के लिए, तौबा करने के लिए, और दूसरों को इस बात पर गवाह करने के लिए कि मैंने गलत बात की थी, झूठ बांधा था, आए मैदान में तो पता चले। एक बार बंदा अल्लाह ताला आपको मुझे बचा कर रखे, बंदा अगर एक बार एक्सरसाइज कर ले कि मैं जिंदगी में आएगा नहीं गिबत और बहतान की तरफ, इतना माफी कौन मांगेगा इतने सबसे। सोशल मीडिया पर इतनों को बदनाम कर दिया, मेरे को समझ नहीं पड़ती, ऐसा लगता था लोगों को बदनाम करना, लोगों की बुराई बयान करना। अच्छा फिर मैं उन लोगों से बात करता हूं कि जिनके सामने ये बातें आती हैं, आपको नहीं घबराहट होता यार किसी के बारे में कोई कमजोर बात, ऐब वाली बात आपके सामने आ जाए? बल्कि मेरी मालूमात है ऐसी वीडियो ज्यादा देखी जाती है जिसमें किसी के ऐब खुले हुए, इंटरेस्ट लेता है एक आदमी, क्या हो गया हमारी, सोचो को कब पाकिस्तान मिलेगी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे, मैं किसी के बारे में क्यों सुनूं यार, अल्लाह ना करे इसकी जगह मेरी खबर होती तो, मुझ पर तोहमत लगा होती तो, मुझ पर बोहतान लगा होता तो, यानी मैं आपको बात बता रहा हूं, माने मेरी बात, बिल्कुल बेपर की लाती है कौम, कोई हाथ ना पैर ना सर ना मुंह कुछ भी नहीं होता, उसके ख्वाब में भी वो नहीं होता जो चल पड़ा होता है, यानी उसको कोई आकर कहता तुझे पता चला क्या तेरे बारे में ये आया, मेरे बारे में कहां से ले आया, है ही नहीं कुछ, पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, तो हमें भी मानने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं है, बस अपने मतलब कान और सोच को हमें अल्लाह पाक पाकीज़गी नसीब करे। आयत नंबर 16 में जो फरमाया गया, और क्यों ना हुआ कि जब तुमने सुना था तो तुम कह देते कि हमारे लिए जायज नहीं कि ये बात कहें, आयत नंबर 16 में यही बयान हो रहा है। इससे मालूम हुआ कि जिसके सामने किसी मुसलमान पर कोई बोहतान बांधा जा रहा हो, किसी मुसलमान पर बोहतान तराशी करके उसे जलील किया जा रहा हो, तो उसे चाहिए कि खामोश ना रहे, बल्कि बोहतान लगाने वालों का रद्द करे और इन्हें इससे मना करे, जिस मुसलमान पर बोहतान लगाया जा रहा है इसकी इज्जत का दिफा करे। अफसोस हमारे माशरे में लोगों का यह हाल ये हो चुका है कि वो किसी बारे में एक दूसरे से हजारों गलत और बेसरोपा बातें सुनते हैं, लेकिन अक्सर जगह पर खामोश रहते हैं और बोहतान तराशी करने वालों को मना करते हैं, ना इनका रद्द करते हैं। यह तर्ज अमल इस्लामी अहकाम के खिलाफ है, और एक मुसलमान की शान नहीं कि वह ऐसा तर्ज अमल अपनाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाए। एक हदीस सुनिए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां किसी मुसलमान मर्द की बेहुर्मती और बेइज्जती की जाती हो, ऐसी जगह जिसने उसकी मदद ना की, यानी ये खामोश सुनता रहा और उनको मना ना किया, तो अल्लाह पाक वहां उसकी मदद नहीं करेगा जहां इससे पसंद हो कि इसकी मदद की जाए। और जो शख्स ऐसे मौके पर किसी मुसलमान मर्द की मदद करेगा जहां उसकी बेहुर्मती और बेइज्जती की जा रही हो, तो अल्लाह ताला ऐसे मौके पर उसकी मदद फरमाएगा जहां उससे महबूब है और मदद की जाए। कितना वाजे ये बयान आ चुका है प्यारे साहब भाइयों हमारे सामने, तो अल्लाह पाक हमें तोहमत से भी बचाए, बोहतान से बचाए, गीबत से बचाए, बदगुमानी से बचाए, और बस इस मामले में बिल्कुल सीरियस हो जाना है। यकीन आप सोचो तो सही यार, कैसा हो जाए घर, कैसा हो जाए हम लोगों का, हैं मदीना मदीना हो जाए, आपस की दोस्तियां, आपस के ताल्लुकात, रिश्तेदार, खानदान कैसे मिलकर रहे ना, इसकी लड़की ने, उसकी लड़की ने, उसकी बहू ने, उसकी साध ने, उसका दामाद ने, उसका बेटा, अरे भाई क्या हो क्या गया यार आप लोगों को, खुदा का खौफ करो, क्यों किसी के घरों की बातें इसी तरह मतलब बेपर की रात, उसमें औरतें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर वो इस्लामी बहनें जो घर बैठ कर सुन रही हैं, मैं आपको भी अल्लाह ताला से डराता हूँ, खुदा से डरो। कोई बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचो तो सही कि ये बात कर क्या रही हूँ। ना बहू को खौफ खुदा, ना सास को खौफ खुदा, ना बेटी को खौफ खुदा, ना आस पड़ोस वाली को खौफ खुदा, ना दोस्त ना रिश्तेदार औरतों को खौफ खुदा। जिनको नहीं है उनका कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारी की सारी औरतें ऐसी हैं, मगर मैं जिन्हें कह रहा हूं मैं उन्हें कह रहा हूं, जिन मर्दों को कह रहा हूं उन्हें कह रहा हूं, जो मीडिया पर बैठकर इस तरह का काम करते मैं उन्हें कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह का काम करे मैं उन्हें कह रहा हूं, जो पेपर मीडिया पर बैठकर ऐसा काम करते मैं उन्हें कह रहा हूं, जो बैठकर इस तरह की गीबत से भरी, तोहमत से भरी, बोतान से भरी, झूठ से भरी पोस्टें बनाकर चलाते मैं उन्हें कह रहा हूं। आप खुदा को जवाब क्या देंगे? मैं उन्हें कह रहा हूं, सबको थोड़ी कहूंगा। जो बचे हुए हैं बचे हुए, अल्लाह उनको बचा कर रखे। लेकिन आप भी जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप भी जानते हैं मीडिया में क्या हो रहा है, आप भी जानते हैं ऑफिस में क्या हो रहा है, आप भी जानते हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो रहा है। को एजुकेशन जहां होती है वहां पर जिसको देखो किसी लड़की पर तोहमत लगा देता है, जिसको देखो खानदान और रिश्तेदारों में लड़कियों पर तोहमत और बोहतान लगा देता है वो। अरे मैं जानता हूं उसको, खुदा का खौफ कर यार, अल्लाह से डर। क्यों किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है? तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्यों किसी मुसलमान भाई पर तोहमत लगाता? अरे मैं जानता हूं उसको यार, अरे मुझे पता है कैसे बनाई है। आप क्या जानते हो यार? आप कुछ भी नहीं जानते, आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पर बयान करते हो। आपको लगता है शैतान ने कान में आकर कुछ फूंक दिया है? बहुत ज्यादा अगर आपको तकलीफ है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत आपको इलाज दे देता हूं यार, आपको हल देता हूं। बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, आप बैठ के उसे बात करो, भाई आपके बारे में मुझे यह है, वो आपको क्लियर करेगा। अच्छा आप क्लियर नहीं करता, आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा था वही दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल, क्या उसका ये ऐप मार्केट में लाना आप पर लाजिम था? अच्छा लाजिम था, क्या मार्केट में लाना लाजिम था या दो से बात करना लाजिम था? अगर किसी के बेटे के बारे में बात है तो आप उसके बाप से बात करोगे या पूरे महल्ले में बात करोगे या लाउड स्पीकर में बात करेंगे? आप करेंगे क्या? आप भाई किसी के बेटे के बारे में आपको लगा, आपको लगता है उसको बचाना बहुत जरूरी है, किसी और के बारे में पता चला आपको लगा बताना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कौम को बताना है तो उसकी शरह रहनुमाई लें, आपको लगता है कि चार को बताना है उसकी शरह रहनुमाई लें। हम लोग आजाद नहीं है, हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का फरमाया गया है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी जबान को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपने ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी नफरतों को, सबको इस्लाम और दीन के आपको उस पर तोलना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। अगर ये मैं मियारात बयान कर रहा हूं आपके सामने, SOPs बयान कर रहा, स्टैंडर्ड्स बयान कर रहा हूं, तो मतलब मादर पिता आजाद मामला थोड़ी होगा कि जो जिसके ऊपर चाहेगा उंगली उठा देगा, जिसके ऊपर चाहेगा कलम चला देगा। ठीक है चलो, दुनिया में कोई आपको बोलने वाला, पूछने वाला, पकड़ने वाला नहीं होगा, हो सकता है नहीं होगा। आप बड़े मतलब के ताल्लुकात वाले होंगे, बड़े मुंह के, आपकी जबान भी बत किसी के काबू में नहीं आती होगी, लोग आपके शर से डरते होंगे, आपके फितरे से डरते होंगे, और आप ये सब कुछ जो तमाशा करोगे, आखिर एक दिन तो मरोगे, मरोगे, कबर में जाओगे, अकेले हो गए, अकेले, कोई नहीं होगा कबर में तुम्हारे पास। उस वक्त क्या करोगे? इन गुनाहों का कैसे जवाब दोगे जो तुमने मुसलमानों की मां, बहन, भाई, पता नहीं किस किस की इज्जतों को पामाल किया? और फिर उस पर बाज लोग तो पैसे लेते हैं, इस तरह की बातें करने को पेशा बना लेते हैं। अल्लाह की पनाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, सुनिएगा, बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में भी हयाई की बात फैले, क्या फरमाया? बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में भी हयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत के मायना, और अगर अल्लाह का फजल उसकी रहमत तुम पर ना होती, और यह कि अल्लाह निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, तो इस अजाब का मजा चखते। पूरा मजमून पीछे से जो आ रहा है, तो इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक जो लोग चाहते हैं, इस आयत का मायना यह है कि वो लोग जो ये इरादा करते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों में भी हयाई की बात फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया का अजाब से क्या मुराद है? हद कायम करना। आखिरत के अजाब से मुराद, अगर तोबा किए बगैर मर गए तो आखिरत में दोज़ख़ है। मजीद फरमाया, अल्लाह ताला दिलों के राज और बातिन के अहवाल जानता है, तुम नहीं जानते। अब अंतशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, कि मुसलमानों में भी हयाई की बात फैले। यहां से अब सुनिए, तफसीर सलातु जिनान में बड़ा ईमान अफरोज ये बयान है। इशात से मुराद तशहीर करना है, एडवर्टाइज करते ना, फैलाते हैं चीज को, फैलाते हैं। इशात से मुराद तशहीर करना और जाहिर करना, जबकि फाहिशा से वो तमाम अकवाल और अफ़ाल मुराद हैं जिनकी कबाहत बहुत ज्यादा है, और यहां आयत में असल मुराद बदकारी है। अलबत्ता याद रहे कि इशात फाहिशा के असल मायना में बहुत वसअत है, चुनाते इशात फाहिशा में जो चीजें दाखिल है इनमें से बाज ये हैं। अब सुनिए, नोट कर लीजिए, इशात फाहिशा में से बाज चीजों का बयान हो रहा है कि जिससे मना किया गया। तो ये इशात फाहिशा क्या है, यानी बुराई का फैलना, बुराई का फैलना, ये क्या है, कौन सी बुराई का यहां बयान किया जा रहा है? नंबर एक, किसी पर लगाए गए बोहतान की इशात करना। बोहतान लगाया, अब इसको फैलाओ। नंबर दो, किसी के खुफिया ऐब पर मुतला होने के बाद उसे फैलाना। यहां तो हमें कहा गया है कि ऐब छुपाओ, यहां तो बंदा बिल्कुल मोबाइल फोन लेकर, कैमरा लेकर, दरवाजे खोलकर, पर्दे हटाकर लोगों के ऐब ढूंढता है। बेशरम बेहया, अगर खुदा ने तेरे ऐब खोल दिए तो तू कहां मुंह छुपाएगा? ये भी कोई जिंदगी है यार, मुसलमानों के ऐब ढूंढते रहना? अस्तग़फिरुल्लाह। क्योंकि पता चले तो बंदा वही दबा दे। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। अल्लाह ना करे आपका ऐब किसी पर जाहिर हो जाए तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी, वही दब जाए कि फैले? अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो नंबर दो, किसी के खुफिया ऐब पर मुतला होने के बाद उसे फैलाना। नंबर तीन, उलमा अहले सुन्नत से बा तकदीर इलाही कोई लग्जिश या फाहिश वाकई हो तो उसकी इशात करना। हो जाती है बाद औकात, उलमा अहले सुन्नत के ताल्लुक से बयान हुआ, बात करते करते कोई ऐसी बात निकल गई, हो जाता है। बा तकदीर इलाही, एक मुकद्दर में था, हो गया। अब कोई लग्जिश फाहिश वाकई हो तो अब उसकी इशात करना। लोग कितने मुतनफिर होंगे भाई, आप उनको इतला देकर बात सोल्व करें ना, उसके बारे में लोगों को उकसाएंगे, बहकाएंगे, देखो किससे क्या कर, देखो इससे क्या कर दिया। ये इसको इशात फाहिशा कहा गया है। हराम कामों की तरगीब देना, ये भी इशात फाहिशा है। नंबर पांच, ऐसी किताबें लिखना, शाये करना और तकसीम करना जिनमें मौजूद कलाम से लोग कुफर और गुमराही में मुबतला हों, इशात फाहिशा में। नंबर छह, अखबारात, नावल, रसाइल और डाइजेस्ट वगैरह लिखना और शाये करना जिससे शहवानी जज्बात मुतहर्रिक हों, बेशर्मी वाले और जो एक तके चुपे से जो मामलात होते हैं उनको तहरीक मिलती है, यानी ऐसी तस्वीरें बनाते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, पता नहीं क्या करते हैं ये, ऐसी क्या पैसे की मतलब के लालच लग गई है यार, ऐसी क्या लालच लग गई है, अपने लिए इतना बड़ा जोखम उठाता है बंदा, इतनी बड़ा इतना बड़े गुनाह कर देता है, लोगों को इतने गुनाहों में मुब्तला करता है। आगे सुनिए, फहश तस्वीर और वीडियोस बनाना, बेचना और इन्हें देखने के जराए मुहैया करना, जो इस तरह के पेजेस चलाते हैं, जो इस तरह की वीडियोस चलाते हैं, जो इस तरह की शॉप चलाते हैं, जो इस तरह का अपनी अर्निंग रखते हैं, बिजनेस बनाते हैं, फहश तस्वीर गंदी तस्वीर और वीडियोस बनाना, इन्हें बेचना और इन्हें देखने के जराए मुहैया करना। नंबर 8, ऐसे इश्तिहारात और साइन बोर्ड वगैरह बनाना और बनवाकर लगवाना जिनमें जाज़बियत और कशिश पैदा करने के लिए जिंसी उरानियत का सहारा लिया गया हो। खोलूं इस बात को मजीद, खोलूं, मतलब कसदन ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं, ऐसे साइन बोर्ड बनाए जाते हैं, एडवर्टाइज की ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं जिनमें उरियानी, नंगापन, बेहयाई के ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं कि लोग कशिश खाएं उसकी तरफ, और उसके चक्कर में, उसको देखने के चक्कर में हमारी कोई प्रोडक्ट देख ली जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अब ये बातों किससे छुपी हुई हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद एक तादाद है जिन्हें पता नहीं है। एक मुसलमान जिसे ये पता चल जाए कि यार ये तो हराम और नाजायज गुनाह भरे काम है, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर मैंने अपनी कोई प्रोडक्ट लगानी है, बोर्ड लगाना ही है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का बोर्ड लगा दूं, अगर कोई तस्वीर लगानी है तो वो लगाऊं जिसकी शरीयत इजाजत दी है, नाजायज किस्म की चीजें करनी और फिर वो भी नाजायज के साथ साथ फहश की तरफ बढ़ना, नंगेपन की तरफ बढ़ना, इस बहाने लोग देखेंगे। वेगनों के पीछे तस्वीरें लगी हुई होती हैं, देखा है कभी वेगनों के पीछे तस्वीर लगा, फौरन आके झुकाने का बंदा, क्या पीछे गाड़ी चला रहा है, आके झुका ठा, यानी वो जो गाड़ी चला रहा है उसने भी शायद नहीं लगाया होगा, अगर उसने लगाया है या उसके सेठ ने लगाया है, वो सोचे तो सही, बेलज्जत गुनाह कमा रहा है, लोग देख रहे हैं, बस लोगों को दिखा रहा है, अपनी बसों में, अपनी वेगनों में पता नहीं क्या क्या चलाते, क्या क्या दिखाते हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत खराबियां हैं, कई चीजें कैंसर की तरह घुसी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, नेकी की दावत देंगे, बयान करेंगे, उनको दावत इस्लामी के जरिए नेकी के मदनी काफिलों में सफर करेंगे, करवाएंगे। आप बताइए कितने हमारे ऐसे मुत्तकीफीन यहां पर आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें यहां आने के बाद पता चला कि असल जिंदगी क्या है और इस्लामी जिंदगी हमें क्या बताती है या नहीं है, ये बताइए। और आप सोचिए कि हजारों नहीं लाखों वो लोग हैं, बल्कि इससे ज्यादा है जिन तक ये बातें पहुंचानी जरूरी है। हर किसी को चाहिए कि अपने हिस्से का चराग जलाए, ये हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहे, नेकी की दावत देनी है, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़कर बयान करना है, पढ़ के सुनाना है, बैठे नहीं रहना, इतना कुछ तबाही देखने के बाद में बैठे रहेंगे क्या? हम अल्लाह ना करे इस बात का इंतजार करेगा ये हयाई कि आग मेरे घर में और आपके घर में लगे? है तो सही रहा, कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं है। नंबर 9, हया सोज मनाजिर पर, जो हया को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, हया सोज मनाजिर पर मुश्तमिल फिल्में और ड्रामे बनाना, इनकी तशहीर करना और इन्हें देखने की तरगीब देना इशात फाहिशा में आता है। और एक बार फिर बता दूं, इशात फाहिशा के ताल्लुक से क्या फरमाया, बेशक जो लोग चाहते कि मुसलमानों बेहयाई की बात फैले, इनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है। अभी अगर कोई सुन रहा है या कल सुन रहा है, कभी भी सुन रहा है, मेरी दरख्वास्त है उससे, प्यार से क्या बताओ को बोलो, प्लीज मान जाइए, छोड़ दीजिए, कोई अच्छा रोजगार ले लो यार, इज्जत वाला रोजगार ले लो, मुसलमानों को हिदायत देने वाला कोई रास्ता इख्तियार कर ले। अब क्यों ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे मुसलमानों में बेहयाई फैलती है, बेशर्मी फैलती है और लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, इनकी हयाएं खत्म हो जाती हैं, शर्म खत्म हो जाती है। मैं उन मुसलमान औरतों से भी दरख्वास्त करता हूं, उन मुसलमान मर्दों से दरख्वास्त करता हूं, उन मुसलमान बिजनेस कम्युनिटी से दरखास्त करता हूं, इनके दरमियान होने वाली जो ब्रोकरेज इस तरह के जो काम करते हैं उनसे दरखास्त करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। अल्लाह पाक अस्मा पैदा करे, कैसे हो सकता है कि बंदा रब को नाराज करके तो रिस्क कमाए और जब रब को राजी करने आए तो भूखा मर जाए, ये कैसे हो सकता है। आप एक नाजायज जो दरवाजा है उसको बंद करें, अल्लाह आप पर हलाल और जायज के 100 दरवाजे खोलेगा। कंडीशन ना करें कि पहले अल्लाह दरवाजे खोले फिर बंद करूंगा, अपने रब से कंडीशन ना कर, अपने रब पर भरोसा कर, बंद कर और फिर रब पर भरोसा कर, अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन और कुशादा दरवाजे खोलेगा, इज्जत के दरवाजे अलग खुलेंगे। सूरे नूर आयत नंबर 19 और 20 तफसीर सिरात जिनान को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नियत है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला अल हबीब।
Said, O Muballigh, for you is my prayer. May you keep ascending success. Said.